اپنے آپ سب چل جاتے ہیں. ان کے لیے کچھ یہ نہیں کرنا پڑتا ہے دیکھنا سننا یہ سب, اپنے آپ اپنے کھڑک میں سبھی پہنچ گئے. اور وہاں جاتے ہی اپنے بچوں کے لیے رمبانے لگے ڈکارنے لگے. ادھر میں والے لوگ سب پرستوت تھے ان کو دوہنے کے لیے, کنتو کوئی بھی گائے دوہنے نہیں دے رہی. وہ کرشن کی پرتیکشا کرتی ہیں, بچے بھی ہیں, بچے چھوڑ بھی دیے ہیں, کنتو بچوں کو اپنے تھانوں کے سمیپ نہیں آنے دے رہے. خبر گئی ادھر کرشن کو سنان کرا رہی ہیں جسودا میا, اور سبھی ماتائیں اپنے اپنے بچوں کو سنان کرا رہی ہیں, ان کو النکار اتیادی سے بھوشت کر رہی ہیں. اتنے میں خبر آئی یہ گائیں دودھ نہیں دے رہی, بچے ڈکر رہے ہیں, میا بھی ڈکر رہی ہے. سبھی کرشن کی طرف میں, گھر کے طرف میں ان کی درشٹی ہے گایوں کی بھی بچوں کی, اور جتنے گوال بال ان کو دوہنے کے لیے پرستت ہو سبھی کرشن کے لیے پرتیکشا کر رہے ہیں بلدیو کی. اس لیے کرشن جلدی سے جسودا میا نے ان کو سنان اتیادی بھوشت کر کے اور شریمتی رادھیکا کے دیے ہوئے منوہر لڈو اور امرت کیلی اتیادی جو وہاں سے لائی تھی کوئی سخی رتی منجری اتیادی ان کے دوارا رکھا تھا, انہوں نے ان کو کھلایا. اور کھلا کر کے کرشن نے بولے جیسے بھیا ابھی جلدی سے جانا ہے مجھے کھڑک میں. بس وہ کرشن بلدیو کو لے کر کے سکھاؤں کو لے کر کے پھر کھڑک میں پہنچے. یہ تو ہوئی شام کی لیلا, وہ کیا ہوئی سندھیا سائن سائن لیلا. اس کے بعد میں پردو, اب کرشن گو کو دوہن کر کے ہزاروں ہزاروں گھڑوں میں دودھ بھیجوا رہے ہیں, کانور پر کانور آ رہی ہیں بھر بھر کر کے, اور دونا سماپت نہیں ہو رہا ہے. جسودا مائیا بار بار ان کے لیے راستہ دیکھ رہی ہیں, کسی کو بھیجا کہ جلدی سے ان کو لاؤ. نند بابا یہاں پر پرساد کے لیے پرستوت ہیں, یہاں پر پرتیکشا کر رہے ہیں. کچھ سمے میں کرشن وہ دوہن اور دوسروں سے بھی کرا کر کے اور دھیرے 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 سمست دودھ کو لے کر کے اور اپنے پہنچ کر کے تب تک رسوئی ایک دم تیار ہے, پوری رسوئی. نند بابا اور روپانند جی اور سب گوال بالے اور کرشن کے سب سکھا لوگ یہاں پر اپستھت ہو گئے, اور ان کو بڑی رنگ کے ساتھ میں ان کو کھلایا جانا. نند بابا نے ایک کو اپنے دائنے طرف میں بلدیو کو اور بائیں طرف میں کرشن کو بیٹھلا کر کے پہلے ان کو بلدیو جی کو کھلاتے ہیں اور پھر اس کو لے کر کے کرشن کو کھلاتے ہیں. ان کا پیٹ بھر جانے کے بعد میں اپنے بھی کچھ کچھ بڑے ہو جانے پر الگ الگ ان کو بیٹھا دیتے ہیں, ان کو بھی کھلاتے ہیں اپنے بھی کھلاتے ہیں, اور سبھی لوگ اس میں بڑا آنند رکھتے ہیں. جب کھانا پینا ہو گیا تب تک بہت بار پر نٹوں کی بھیڑ آ گئی ہے, بھاٹوں کی بھیڑ ہے, بڑے بڑے گنی گنجوں اور سنگیتوں کی بھیڑ لگ گئی ہے, اور اچھے اچھے لوگ سب وہاں پر ہیں. وہاں پر یہ آ گیا سنگدھ کنٹھ اور مدھو کنٹھ, یہ لوگ اپنی کتھائیں سنانے کے لیے وہاں پر پرستوت ہو گئے. کرشن کی بیتی ہوئی لیلاؤں کو مانو آج ہی یہ لیلا سمپن ہوئی ہے اس روپ میں کہتے ہیں, اور یہ لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں مانے وبھاوت ہو جاتے ہیں, اتنت آسکتی کے سہت سنتے ہیں مانو آج ہی ابھی یہ لیلا ہوئی. اگاسر کا نام سنتے ہیں, پوتنا کا لیلا سناتے ہیں, اور یہ تنمے ہو کر کے سن کر کے ابھی روتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں, اس طرح سے وہ لیلاؤں کو سنتے ہیں. اب کرشن جی کا سمے ہو گیا ہے سونے کا, رادھا جی کے بھی سونے کا سمے ہو گیا. سب سکھیاں رادھا جی کو لے کر کے سین مندر میں جاتے ہیں, اور ادھر میں کرشن اپنے سکھاؤں کو لے کر کے جسودا جی کے گھر میں اپنے گرہ میں سونے جاتے ہیں. جسودا میا آ کر کے ان کو بڑے دلار کر کے سوئن کراتی ہیں. رادھام سالی گنا تام اشت اشت نشا یوگ ویشام پردوشے دوتیا برند اپدیش سات ابسرت جمنا تیر کلپاگم کنجام کرشنم گوپئی سبھایان بہت گن کل कला अवलोकनम स्निग्ध मात्रा यत्नात् आनीय संसायितम अथ निर्भीतम प्राप्त कुंजम स्मरामि। राधा जी शयन की लीला करते हैं, थोड़ी देर के बाद में बिंदा जी के उपदेश से यमुना के किनारे सांकेतिक कुंज में पहुंचती। कभी कभी यह सांकेत वन है, वहां नंदगांव और बरसाना के बीच में। ये सांकेत कुंज एक ही नहीं, वृंदावन के लिए भी संकेत कुंज बतलाया गया, ये सेवा कुंज इत्यादि। कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, जहां जहां बिंदा देवी संकेत करती हैं, यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, उस स्थान के लिए कहा गया। तो यहाँ पर राधा जी बिंदा के उपदेश से कभी कभी सुबल जी के साथ में सांकेतिक कुंज में उपस्थित होती हैं। सीताशित निशा योग्य, सीताशित माने अंधेरी और चांदनी रात के अनुसार में अपने आभूषण और कपड़ों को धारण करते, जैसी जैसी रात होती वैसे कपड़े धारण करते। इसलिए कभी लोग काले कपड़े धारण कराते हैं, काला वेश, कभी स्वर्णिम वेश, कभी सफेद वेश, कभी कुछ धारण कराते हैं। अमावस्या और भी अमावस्या के आस पास की रात होती। अष्टमी तक के लिए, अष्टमी की रात यदि अंधेरी हो तो उसको उसी रात में मान लेते हैं, और अष्टमी से कम वाली को इधर में मान लेते हैं। आनंद से वहां पर जाती हैं और उसी समय उनकी आठ स्थितियों का वर्णन किया गया। अभिसारिका, वासक सज्जा, उत्कंठिका, ये सब आठ अवस्थाएं वर्णन किया गया भक्त स्वामी सिंधु अथवा उज्जैन। इधर में कृष्णचंद्र गोप सभा में भोजन करने के बाद में गोप सभा में उपस्थित होते हैं और नाना प्रकार के गुणों और कलाओं का श्रवण और दर्शन करते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। नट लोग विभिन्न प्रकार का की कलाओं को प्रदर्शन करते हैं, संगीतज्ञ लोग करते हैं अपने संगीत की चर्चा और स्निग्ध कंठ कृष्ण की लीला कथाओं का ये वर्णन करते हैं। कभी मुख स्निग्ध और मधुकंठ मातृ जत्ने करिलाशय, माता जी आकर के देख लीजिए कृष्ण को नींद नहीं आ रही तो वो निद्रा देवी को बुलाती है और हे निद्या देवी आप इसकी सेवा करें, उसको थपथपाती हुई उनको पैर भी दबा देती हैं, ये शरीर में ऐसे करते करते उनको सुला देती है। कृष्ण सो जाते हैं किंतु थोड़ी देर में फिर वो उठ जाते हैं और जहाँ श्रीमती राधिका जी उनके लिए प्रतीक्षा करती हैं बस वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ तक हुआ प्रदोष, इसके बाद में मध्यरात्रि में इनके मिलन का ये सब वर्णन। अब ये रात्रि याम अर्थात भजन की सबसे परिपक्व अवस्था, निशांत से आरंभ किया और यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर भजन में श्रद्धा से चले, अनर्थग्रस्त अवस्था श्रद्धा से, और फिर पुनः ये अष्टम दशा में उपस्थित हुए हैं। उस समय में चैतन्य महाप्रभु आठवें श्लोक को बतला रहे हैं, एक एक चैतन्य शिक्षा स्तर का, एक एक श्लोक एक एक ज्ञान के लिए, चेतो दर्पण मार्जनम से लेकर के और असली स्वा पादरतां तिनस्तुमाम अदर्शनान मर्महतां करो दुआ यथा तथा वाद तथा तुलम पठो मत प्राणाथ हस्तु सही बना पर। चैतन्य चैतन्यकार ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है, श्रीमती राधिका जी विरह की दशा में उद्धव से ये कह रहे हैं, माथुर विरह गातम माने प्रवास, वहां तक मिलन हुआ, अब ये धीरे धीरे अथवा कृष्ण मिल रहे हैं, ये संभोग प्रेम भजन संभोग दोनों का मिलन हो रहा है उसमें ये बतला रहे हैं। कृष्ण से श्रीमती राधिका जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं, असली स्वापादरतांकिन अमी कृष्ण पद दासी, मैं कृष्ण की दासी उनकी चरण की सेविका हूं, वे रसस्वरूप और आनंदमय है, सुख की राशि है, वे चाहे मुझे आलिंगन कर मुझे सुखी करें, आलिंगिया करें आत्मसात, आत्मसात मैंने आलिंगन करके मुझे अपना बना ले, अथवा मुझे दर्शन न दें और मैंने मन और प्राणों को न समझे जो मैं कितनी दुखी हूं, ये न समझे कोई भी बात नहीं, तबूती हो मूर प्राण तभी मेरे प्राण नाती हूं। इसके बाद में आया है नागनी अपनी दुख सबे बान चितारी सुख मोरे यदि दिले दुख तार हुई महासुख से दुख मोर सुख भर, मैं सब समय कृष्ण के सुख की के लिए प्रयास करती हूँ अभिलाषा करती हूँ, यदि वो सुख के बदले मुझे दुख दें और दर्शन दें मुझे त्याग कर दें तभी मेरे प्राण नाते, अथवा मुझे आलिंगन करके मेरे पास न रहें सबको छोड़ करके तभी मेरे प्राण नाते, सब अवस्था में मेरे प्राण, यदि हमें छोड़ करके वो दूसरों गोपियों के भी पास न रहना पसंद करते हैं तो वो सुखी रहें, वो मथुरा में रहें सुखी रहें, हम यहाँ मर जाएंगे भले ही उनके विरह में तड़पते हुए, किंतु हम ये नहीं चाहते हैं कि वो मथुरा से यहाँ पर, और यदि उनको उनको छोड़ करके यहाँ आने में सुख है तो वो आ सकते हैं। एक लीला है भजन कार्य अवस्था सिद्धि वार साध्य भक्ति निष्ठा अर्थात एकांत कृष्ण परतंत्रता के लिए ये बतला रहे हैं, सब समय अपने साधक की इच्छा के अनुसार में चलना, ये सबको हमको भजन करते हुए ही हमको सीखना चाहिए, चाहे लाभ कष्ट हो दुख हो उनकी सेवा का परित्याग नहीं हम करेंगे। जब यदि प्रहलाद महाराज की तरफ हमारी अवस्था आ जाए ना तो इसमें कितने साधक छोड़ देंगे, हो सकता है हरिदास ठाकुर की सोच 21 या कितने बाजारों में 22 बाजारों में मार खाने से हम लोग उसके पहले ही छोड़ करके चले जाएंगे घर, अभी हम चिंता करते हैं कि क्या करेंगे भविष्य में भविष्य में, किंतु शुद्ध वक्ता ऐसा नहीं सोचता, कैसी भी परिस्थिति हो किसी भी परिस्थिति में भजन नहीं छोड़ेगा, सब वो रुचि आने ही पर ऐसी दशा हो जाए, ये प्रेम की अत्यंत घनीभूत अवस्था में आने की बात ही क्या, रुचि आते ही ऐसा हो जाए, इसलिए हम लोग उसी प्रकार से करेंगे जैसा कि ये कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं किंतु अपने भजन में हमारी निष्ठा होनी चाहिए, जहां सुविधा हो उसी में झुक पड़े ऐसा मत करो, ऐसे होने से हमारी भक्ति का हानि होगी। शुद्ध रूप में हम चलेंगे महाप्रभु के परिकर जिस पथ से चले हैं उसी पथ से चल करके हम लोग आगे बढ़े, इसलिए सुख में दुख में जैसी भी स्थिति हो, अभी प्रभुपाद जी के जाने के बाद में ऐसी परिस्थिति आई जिसमें करीब करीब 75% लोग मठ मंदिर छोड़ करके चले गए घर या कहां कहां बह गए, कल गुरु महाराज जी और ऐसे ऐसे ही कुछ लोग रह गए, ऐसे ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम किसी भी परिस्थिति में भजन नहीं छोड़ें और ऐसा ही भजन करने की चेष्टा करेंगे, हम साधकों के लिए ही का ऐसी स्थिति वाले तो भक्त लोग तो वैसे है ही हैं नहीं छोड़ेंगे। मत्यो जदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकित्सुतो में तदा मृतत्वं प्रतिपाद्यमान प्रतिपद्यमान मया भूयाय सकल्पते गई,
सर्व कर्म परित किया गया, सर्व कर्म किया गया, मोरे आत्मनिवेदिया जेई करे अमार सेवन, अमृत तत्व धर्म पाइया लीला मध्य प्रवेशिया आमा सह करे रमन। भक्ति विनोद ठाकुर जी इसका श्लोक का अर्थ ये कर रहे हैं, मत्या जब मत में रहने वाले मरणशील साधक कभी जगा, जिस समय त्यक्त समस्त कर्मा, समस्त कर्मों को अपवित्र समझकर या अमंगलकारी समझकर इनका त्याग कर देते हैं सब प्रकार से, और निवेदितात्मा विचिकित्स होते हैं और अपने को संपूर्ण रूप से तन मन वचन इत्यादि आत्मा से संपूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं। उस समय विचिकित्सितों में मैं उनकी विशेष रूप से
करने की इच्छा करता हूँ,
चिकित्सा करता हूँ। विचिकित्सक क्या करते हैं, उनके अनर्थों को दूर कर देते हैं सबसे पहले, और शुद्ध भक्ति का प्रवेश उनमें कराते हैं, शक्ति संचार करते हैं, शुद्ध भक्तों का संग दिला देते हैं, क्रमशः उनमें निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव तक उसमें प्रवेश कराते हैं। और कैसे हमारी सेवा में ये प्रवेश हो सकता है, इसके लिए विशेष रूप से उसकी चिकित्सा करता हूँ, उनके हृदय को ऐसा करता हूँ,
सेवा योग्य स्वरूप को प्रकट करता
हूँ। जैसे किस रूप में उसकी आत्मा है, आत्मा में जो भाव है नित्य, उस भाव को मैं उदित कराता हूँ जो जिसके अंदर में सेवा की हूँ, और उसके लिए योग्य बना करके अपने नित्य सेवा में उनको प्रवेश करता हूँ। जैसे ये शाखा जा दंड कारण्य वासी महर्षि और श्रुतिचरी गोपियां, श्रुतिचरी गोपियां या दंडकारण्य निवासी ये साधक जीव, वे लोग भी हम लोगों की स्थिति में कभी होंगे, साधु संतों का संग पाया होगा, और कर्म की गति को जान करके ये बड़ी भयानक है, उसकी गति जान करके सदगुरु पदाश्रय किया होगा, उत्तम श्रेय को जानने के लिए, और धीरे धीरे साधु संघ में समस्त प्रकार के सबको छोड़ दिया, जैसे भरत जी ने छोड़ दिया, नारद जी ने छोड़ दिया। दो प्रकार का छोड़ना होता है, एक स्वरूपतः छोड़ दिया जाए और दूसरा होता है बाह्य रूप में उनको छोड़ा जाए, मन से उनको उनकी आसक्ति छोड़ करके कर्म करना चाहिए। तो पहली स्थिति में आसक्ति छोड़ करके वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, ये पहली स्थिति, और दूसरी स्थिति में भक्त की भांति सब छोड़ करके, पहले की भांति में जैसे प्रजापति ब्रह्मा जी और सब भक्त लोग हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भक्ति करते हैं, स्वरूपतः उनको नहीं छोड़ते, किंतु कुछ ऐसे हैं जो ब्रह्मा के उपदेश देने पर भी ये नारद ऋषि, सनक सनंदन, सनत कुमार, ये लोग नहीं कर्म मार्ग में प्रविष्ट हुए, किंतु ब्रह्मा के आदेश से कपिल देव जी के पिता
कर्दम
ऋषि इत्यादि संसार में आए, उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, विवाह किया, प्रजाओं का उत्पन्न किया, और फिर पीछे से भक्ति भी करते रहे, किंतु अंत में फिर छोड़ करके भगवान का प्रेम। इसलिए पहले कर्म में आसक्ति छोड़ करके कर्म करो जो ऐसे हैं, और गुरु वैष्णव के संग से जिनको नारद ऋषि जैसा, सनत सनंदन, सनत कुमार जैसे गुरु और वैष्णव मिले, वो स्वरूपतः इन सबको छोड़ करके और क्या करे, 24 घंटा भगवान की भजन में। ऐसा करने पर जब संपूर्ण रूप से शरणागति उसके भगवान देखेंगे, तो और उन्नत अधिकारी वैष्णवों को गुरु के रूप में, वैष्णवों के रूप में उनके पास में भेज करके ये सब के प्रति उनका लोभ उत्पन्न कराएंगे, लोग उत्पन्न कराने के मूल कारण वही हैं, और उसमें सहायता देकर के उस लोग को प्राप्त करने के लिए विचिकित्सित हो वो चिकित्सा करेंगे, वो सभी वही कराते हैं, और अंत में धीरे 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 उसका स्वरूप का रस जिस रूप में है, जिस रूप का सेवक है, उसके लिए योग्य बने। जो लॉ के लिए क्वालिफाइड है वो चलेगा किधर, लॉ की तरफ में पढ़ेगा ग्रेजुएशन के बाद में। जो इंजीनियर बनना चाहता है वो इंजीनियर की तरफ में चलेगा, जो और व्यवसाय इत्यादि करना चाहता है वो क्या करेगा, बीकम एमकम और सीए इत्यादि की तरफ में चलेगा। वहां से विभाग खुल जाते हैं अलग अलग। उसी तरह से भगवान के बहुत से डिपार्टमेंट में हैं, और उन डिपार्टमेंट में तरह तरह से सब गुरु वर्ग हैं, वो उन्हीं का संग देंगे और संग दे रहा करके धीरे धीरे उस विषय में एक्सपर्ट करके किसी को शांत रस में, किसी को दास रस में, किसी को सख्त और किसी को वात्सल्य और किसी को मधुर रस के योग्य बना करके और नित्य लीला में प्रवेश कर। जैसे इन लोगों को अभी बतला रहा था, दंडकारण्य वासियों को, उनको सुजोग देते 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 रामचंद्र की लीला तक ले आए। वो लोग इसके पूर्वकल्प से ही महाप्रभु जी की कथाओं को सुन करके आकृष्ट हुए होंगे, और उनका कुछ संग पाकर के उनके अंदर में लोभ उत्पन्न हुआ होगा। वो लोग विकसित होते 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 कुछ दूर तक आ गया, धीरे धीरे वो भावावस्था तक बिंद मंगल की स्थिति में पहुंचे होंगे। अब पहुंच करके अब रामचंद्र जी के समय में आए, किंतु शिथिल गति से उनका साधन भजन चल रहा होगा। कृष्ण ने रामचंद्र जी का उनको संग दे दिया और उनके द्वारा उद्दीपित कर दी उनकी साधना को। उद्दीपन करने से ये कौन कर रहा है, वह कृष्ण ही करा रहे। उद्दीपित करके रामचंद्र जी से मांगा, जे प्रभु आप हमें ऐसी कीजिए व्यवस्था जिससे हम लोग गोपी भाव से कृष्ण को पा सकें। रामचंद्र जी ने कहा है, मेरे द्वारा तो ये संभव पर नहीं, किंतु हाँ मैं ऐसी व्यवस्था करता हूँ कि अपनी जोग माया जो मेरी है उसके द्वारा तुम्हारा जन्म गोपी शरीर में करा, और वहाँ पर मैं ही कृष्ण के रूप में, या मेरा जो मूल स्वरूप कृष्ण है ब्रजेंद्र नंदन नंदन के रूप में, मैं तुम्हारी भावनाओं को वहां तक पहुंचा। इसलिए उनको जन्म दिला दिया। जन्म दिलाने के बाद में गोपी करह में जन्म हुआ। धीरे 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 किसी किसी गोपियों का, उन मूल जो गोपियां थी नित्य सिद्धा, उनका संग कराया, ये भी चिकित्सा हुई। और किसी किसी को, किसी किसी का विवाह हो गया दूसरे गोपों से, उनकी शादी भी हो गई, उनको बाल बच्चे भी हो गए। कभी कृष्ण में पूर्ण अनुराग है पूर्व जन्म के लिए, किंतु यही सब कसाय है। तो किसी किसी का सिद्ध गोपियों के साथ में संग होने से उसके लिए युक्त हो गई, और उनको राजस्थली में कृष्ण के साथ में पहुंचा। बाकी जो रह गई लड़के बाल बच्चे वाली, वो कृष्ण से मिलने के लिए अर्जुन की, किंतु पीछे से जब उनके पति ने रोक दिया तो अत्यंत मर्माहत नहीं और विरह की आग से उनका यह भाव सब जल गया। जो कुछ कसाय था, कमी थी, वो पूरी हो गई और कृष्ण ने उनको राष्ट्रस्थली में पहुंचा। तो ये सब कृष्ण ही करते हैं। विरह से तड़फाया, विरह से तड़फाना भी आम पकाने के समान गर्मी देना है, ये विरह की आग है। इस तरह से कृष्ण अपनी सेवा के लिए साधकों को योग्य बना करके धीरे धीरे वहां पर, सब तरह के आम लगे हुए, हम लोग आम के फल हैं, कोई अभी छोटे छोटे टिकोरे, टिकोरा जानते हैं, टिकोरा होता ये भोजपुरी भाषा, छोटे छोटे आम के जो फल होते हैं, छोटी सरसों के बराबर, उसको टिकोरे कहते हैं। कोई टिकोरे हैं, कोई अभी मंजरी के रूप में अभी लग रहे हैं, कोई कोई कुछ बड़े हैं वो गए हैं, कुछ थोड़े से, उसमें कितने झड़ जाते हैं देखा है ना, सभी आम लग जाए तो पेड़ ही गिर जाए, इसलिए कितने सब झड़ जाते हैं, कुछ कुछ कोई वर्षा से झड़ जाते हैं, आप तूफान आम में तूफान गिर जाते हैं, कोई अधपक्के तक होने पर भी कितने आदमी तोड़ लेते हैं, वो आंधी में टूट जाते हैं, कुछ गिर बहुत कम पक जाते हैं, रह लेते हैं पकने के लिए, देखते हैं कि जी ये अब पक जाएंगे तो दूसरा आदमी ले लेगा, इसलिए चतुर जो
माली होते
हैं, माली होता है, देखते हैं कि अब पकने पकने को हो रहा है, अब पक जाएगा, तोड़ने पर भी उनको तोड़ दिया, घर में रखा, एक एक पकता जाता है और खाता जाता है, ऐसे कृष्ण रूपी माली उनको योग सिद्धा योग माया के द्वारा उनको धीरे धीरे पका करके, विरह में पका करके, धीरे धीरे चिकित्सा करके अपनी सेवा के, कोई कोई बिरला आदमी ही साधक ही उस स्थिति में पहुंचता है, इसलिए यहां कहते हैं सर्व कर्म त्यागिया, ऐसे नहीं होगा कि यहां कभी गल बजाएंगे उधर भी करेंगे, उसके भी गल में जाकर के मुंह लगाएंगे, उसके भी उस घाट पर भी पानी पिएंगे, उस घाट पर भी पानी पिएंगे, कर्म भी करेंगे, ज्ञानियों का भी संग करेंगे, योगियों का भी संग करेंगे, जो बुलाया उसी के पास में चलेगा, भाई हमको तो सभी बुलाते हैं, हम सबके पास में जाएंगे। कृष्ण देखें अच्छा ये सब जगह गाल भरता है, अभी ठहरो, 10 जन 20 जन लगाएंगे, भोगा लेंगे, और जैसे दुकान वाले डंडा लेकर के बैठते हैं ना, यदि किसी ने मुख लगा दिया तो क्या करते हैं, डंडा उठाया, तो ऐसे बीच बीच में चिकित्सा कराएंगे, करते करते कितने जन्म जाएंगे, एकांतिक होंगे, आगे बढ़े, तो सही करे हमारा, जो लोग कर्म का त्याग करके, ज्ञान का त्याग करके, योग का त्याग करके, सब चीजों का त्याग करके, शरीर से मन से आत्मा से हमारे प्रति प्रपन्न होता है, शरणागत होता है, मैं उन्हें अमृत धर्म माने भक्ति धर्म, क्योंकि यहाँ बतला है अमृतत्व, भक्ति भक्ति ही मई भक्ति भूताना अमृता, इसलिए भक्ति तो अमृत है, ये अमृत दे करके आप उसे स्नेह भी दे करके अपनी सेवा के योग्य बना देते हैं। हम सह करे तब कृष्ण के साथ में रमण करने के लिए योग्य होता है। कितना बजा भाई?
सवा सात।
कहते हैं कि देखो इसके लिए बहुत कुछ प्रत्याग करने की जरूरत है, ऐसे नहीं होगा ये अवस्था, आठवीं दुर्दशा है, ये साधारण अवस्था है। चैतन्य महाप्रभु जी के शरणागत होना होगा ही, और महाप्रभु के शरणागत कैसे होना होगा, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट भी कल चरित्र उनका श्रवण किया, रघुनाथ भट्ट जी हैं, भूगर्भ गोस्वामी हैं, लोकनाथ गोस्वामी हैं, नरोत्तम ठाकुर पीछे से विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसे ही शरणागत होना होगा, न धर्म न धर्म निरुक्तम किल कुरु प्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचार्यामिहतम सचि सुनु नंदीश्वर पति सुतत्ते गुरुवरम मुकुंड स्मर परम अजस्र मन। इसकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे, आज यही पंथा को हम लोग सब चेष्टा करेंगे, जो जिस स्टेज में है उसी स्टेज से उन्नत होने के लिए चेष्टा करेंगे। जब तक हम अपने मन से विषयों को नहीं छोड़ेंगे तब तक महाप्रभु के प्रेम घर में हम प्रवेश नहीं कर, समझ में नहीं आएगा जो क्या सीख रहे, इसलिए इसको छोड़ करके अच्छी तरह से आत्म शरणागत होकर के इसमें प्रवेश करना। लीजिए
तवैवास्मि नदिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम शरणम्।
श्लोक की व्याख्या हम लोगों ने की थी, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि
सप्तम जाम अष्टम जाम भजन करने के लिए साधक को उसी स्तर में पहुंचना पड़ेगा। उसी स्तर में पहुंचना पड़ेगा। उन्होंने मनस शिक्षा का एक श्लोक लिया, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, और उसको कह रहे हैं। अतः तो ऐसे साधक होना चाहिए जो रघुनाथ दास गोस्वामी की तरफ में भजन कर सके, अन्यथा उसके लिए ऐसा भजन संभव पर नहीं है। अर्थात प्रेम प्राप्त भाव तो उसको हो ही गया है, साथ साथ में वह अपने चित्त को ऐसे लगा दिया है कि मन के द्वारा अभिनिविष्ट रहता है, और उसका नित्य सिद्ध जो परिकर है उनका अनुसरण करता हुआ भजन करता है, ऐसा होना चाहिए। रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को आप लोग जानते हैं, बचपन में ही जब वो किशोरावस्था में थे, बचपन में ही हरिदास ठाकुर का उनका संग हुआ और उनके संग से प्रभावित होकर के बचपन में ही उन्होंने अपने पुरोहित से पहले मंत्र लिए, और इसके बाद में उनके गुरु कौन थे? जदुनंदन ही थे, जदुनंदन आचार्य जी। यह अद्वैताचार्य के प्रिय पात्रों में से हैं, उनसे उन्होंने दीक्षा ली, मंत्र लिया और भजन में लग गए। बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, बड़े सुंदर थे राजकुमार, और अपने पिता और ताऊ जी की संपत्ति के एकमात्र अधिकारी। उन लोगों ने देखा कि ये कुछ लड़का बिगड़ रहा है। बिगड़ना मैंने क्या, बिगड़ना उसको कहते हैं जो सिनेमा बायोस्कोप ना जाए, जो सिनेमा बायोस्कोप जाता है या जाती है, भोग विलास में प्रमत्त रहता है या प्रमत्त रहते हैं, बिगड़ेल हो गए हैं वो, बल्कि ठीक है, किंतु बिगड़े हुए वो हैं जो एकादशी का व्रत करने लगे, लड़का या लड़का, गले में माला ले ले वो बिगड़ेल हो गए आजकल के समाज की दृष्टि। अब भगवान के नाम की माला यदि ले ले तो एकदम और बिगड़ी या बिगड़ गए, लोगों की ऐसी आजकल धारणाएं हैं जो वो बिगड़ चुका है, चरित्र से भ्रष्ट हैं, मदिरापान करते हैं, झूठ बोलते हैं, दुष्चरित्र हैं, कोई भी बात नहीं, ये सब चल जाएगा, किंतु यदि भगवत भजन करने लग गया तो वो सब प्रकार से बिगड़ गया। तो वैसे उनके पिता ने सोचा जी ये बिगड़ गया, उन्होंने सोचा जी अच्छा एक उपाय है, बड़ी सुंदरी लड़की से इसकी शादी कर दी, और जितने जीवन में भोग विलास के साधन है सब इसको उपलब्ध करा दिए। उन्होंने ऐसे ही की, विश्व विख्यात उस समय जो लड़की थी, परम सुंदरी किशोरी लड़की से उसकी शादी कर दी और भोग की सामग्री पूरी भर दी। किंतु जिसका मन कृष्ण में लग गया, भजन में मन लग गया, वो ये सब चीजें उनको तनिक भी सुहाती नहीं, वो बांध नहीं सकी, फिर भी महाप्रभु के पास में जाने आने की चेष्टा करने लगे। वो तो पहले ही चले जाते, महाप्रभु जी ने उनको मना कर दिया, अभी मत जाओ, घर में रहो, पागलपन मत करो, तुम अभी घर में रह करके भगवान का भजन करो, परिपक्व होने पर देखा जाए। महाप्रभु को कहने से कुछ दिन के लिए और रुक गया। मैंने कहा घर में रह करके घर का व्यवहार जो है वो ठीक रखो, किंतु अपने निष्ठा ठीक रखो, घर का व्यवहार करो कुशलता के साथ में, किंतु मन को अपने भगवान के पास। उन्होंने ऐसा किया, किसी को मालूम नहीं होने दिया, दिन पर दिन उनकी भक्ति बढ़ने लगी और व्यवहार में भी कुशल होकर के करने लग गए, किसी को पता नहीं चला। किंतु बीच बीच में वो महाप्रभु जी के पास में जाना आना चाहते, नित्यानंद प्रभु कृपा से उनको सुयोग मिल गया और वो सबको छोड़ करके कोई विवाहिता स्त्री रह गई और पूरा धन संपत्ति जो अकेले मालिक थे वो भी रह गया। सबको छोड़ करके पैदल जगन्नाथपुरी चले गए, बिना खाए पिए 15 दिन का रास्ता, कितने दिन का, एक महीने का रास्ता पैदल 12 दिनों में तय कर लिया।
600 किलोमीटर
पार कर गए। कभी खाया सूखा कोई चीज, चूड़ा और मुड़ी लोगों ने कुछ दे दिया, जंगल के रास्ते से इधर उधर कर कोई पकड़ न सके और वहां पर चले। महाप्रभु जी पहले तो उनको मना किया, वही महाप्रभु जी कह रहे हैं आज भगवान ने कृपा करके तुमको विषय के गर्त से, गड्ढे से, विषय के गड्ढे से और तुमको निकाल करके यहाँ ला दिया। फिर वहां पर जब तक महाप्रभु जी रहे, स्वरूप दामोदर रहे, उनके साथ में रहे, खाते क्या थे, खाना तो जरूर होगा ना, पहले खाते थे बाजार से मांग लेते थे, गोविंद या क्या
आनंद
बाजार, आनंद बाजार से मांग करके ठाकुर जी का प्रसाद खा लेते, किसी से कोई दे देता बिना मांगे, वहाँ नियम है। आप लोग भी जाएंगे ना, कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको दे देगा प्रसाद बिना मांगे। हम भी एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए, देखा बिना मांगे ही गए, महात्मा जी महाप्रसाद खाएंगे, तब हम लोग मौन रहे तो समझा जाए मौनम सम्मति लक्षण, लेकर के बैठा दिया हम लोगों ने, खाइए। अब चस्का लग गया है वहाँ पर जाने पर, जब तक कि वहाँ का महाप्रसाद दाल और चावल नहीं मिलेगा मन ही नहीं मानता, यदि कोई नहीं देगा तो अपने आप खरीद ही लेंगे या किसी भक्त से कह देंगे कि भाई प्रसाद खाने की इच्छा हो रही है बस, वो ला देगा वहाँ पर खा लेंगे, तो वही मांग करके खाने लगे। कुछ दिनों के बाद में कहा कि ये उचित नहीं, सिंह दरवाजे पर रह करके कोई दे देता तो वो दे दे। फिर सोचा जी ये बेस्या का काम है प्रतीक्षा करना, मैं ये भी प्रतीक्षा नहीं करूँगा, सड़ा गला अन्न जो गायों से खाने से बच जाता बासी अन्न उसी को धो धा करके नमक दे करके खाते, दिन रात शयन नहीं करते, सोते नहीं, कोई भी भोग की सामग्री उनके पास में नहीं। राजा के लड़के, उनके पिताजी ने कुछ रुपया और नौकर चाकर ब्राह्मण भी भेजा, किंतु उन्होंने कोई चीज़ ग्रहण नहीं किया, सब लौटा दिया। ऐसे रहकर उन्होंने भजन किया। महाप्रभु जी के अप्रकट के बाद में, स्वरूप दामोदर के अप्रकट के बाद में वो चले आए वृंदावन, इसलिए आए कि मैं मरूंगा यहीं पर, भजन तजन तो होता नहीं है, और वो लोग सब चले गए, मैं भी जमुना में कूद करके अथवा गोवर्धन में जा करके पेड़ वहीं से गिर जाऊपात करके मर जाऊंगा, जब भजन ही नहीं हुआ तो क्या जरूरत है ये शरीर की रक्षा का। रूप सनातन जी ने बड़े आग्रह से छोटे भाई की तरफ में उनको रखा, उनको समझाया बुझा और उनको राधा कुंड में रहने दिया। वहां पर रहते दिन रात भजन करते, सोने ठोने का तो कोई नाम नहीं, लवण जैसी चीज को भी नहीं, टेस्ट के लिए नहीं लेते, हम लोग सब कुछ छोड़ देंगे, सब्जी बिना नमक की कोई मिल जाए वो अच्छी नहीं, नमक का जरूर कुछ ना कुछ टेस्ट होना चाहिए, उन्होंने वो भी छोड़ दिया, केवल इतना सा मट्ठा भोग छाछ इतना सा बस लेकर के जीवन निर्वाह करते, और ऐसे आविष्ट रहते थे कि उनको पता नहीं कि संसार कहाँ है। किसी ने एक बार बड़े दोने में उनको मट्ठा दिया, उन्हें पूछा ये कहाँ से ले आया, उन्हें कहा जो सखी स्थली से, सखी स्थली मैंने जहाँ पर चंद्रावली जी वास करती हूँ वहाँ से, अरे तुम वहाँ से लाया, बस उसको फेंक दिया और लटकिया उठा करके मारने दौड़े, मारने दौड़े मैंने होश में नहीं, चंद्रावली का नाम सुनते ही उनका भीतर में आवेश आ गया और सोचा ये कृष्ण को ले जाने के लिए राधा जी के यहाँ से ये सखी ठगने के लिए आई है, इसलिए उस पर क्रोधित हुआ। वो भी नहीं समझा, ऐसे भजन में आविष्ट रहते थे। उन्हीं का ये श्लोक, सब समय यदि भजन करना है तो आज न कल न परसों ऐसी स्थिति लानी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, ऐसे ही भावना आनी पड़ेगी इस प्रेम के लिए। साधारण भजन करने के लिए ये सब नहीं हो, जब तक हमारे अनर्थ हैं, जब तक निष्ठा है, रुचि है, तब तक तो ऐसे ही चल जाएगा, किंतु ऐसा प्रेम लाने के लिए ये जरूर ऐसा ही करना, अन्यथा ऐसा शुद्ध प्रेम नहीं आ सकता है। तो कह रहे हैं यदि भजन करने की लालसा है तो इनका अनुसरण करो। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, न धर्मं ना धर्मं सुतगुण निरुक्तं कुरु करु। शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में और धर्मशास्त्रों में जिसको धर्म कहा गया है और उसके पालन करने के लिए विधियां दी गई हैं, और वेदों में जिन कर्मों को निषेध किया गया है, इसके करने से पाप होता है, उन अधर्मों को, ये दोनों को हमको छोड़ना है। न हमको धर्म से न अधर्म किसी से हमको जरूरत नहीं है, न पुण्य से जरूरत है न पाप से जरूरत है। तो तीसरी चीज कोई होती है पुण्य पाप के अतिरिक्त कहाँ होती है? तृतीया पंथा मुरारे में भगवान का भजन करना न तो पुण्य है न पाप है, इन दोनों से अलग है, अतीत है। वो भगवान का भजन करने वाला न पुण्य करता है न पाप, ये दोनों लोहे और सोने की बेड़ी के समान है, ये दोनों बंधन का कारण है, पाप और पुण्य दोनों। इसलिए भजन करने वाला व्यक्ति इन दोनों से दूर रहेगा। तो धर्म मैंने जैसे गोपियां हैं, गोपियां तो आदर्श हैं, इसके अतिरिक्त भी पांडवों को लीजिए, प्रहलाद महाराज जी को लीजिए, महाप्रभु के भक्तों को लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, हरिदास ठाकुर जन्म से मुसलमान थे किंतु बचपन से ही हरिनाम करते हैं। हरिनाम करने वाला जाति पाति से अतीत होता है, जाति पात पूछे ना कोई, हरि का भजा तो हरि का होई। वैष्णव में जाति पात देखना ये भागवत में भी निषेध किया गया है, ऐसा करने से अपराध होता है वैष्णव की जाति पाति देखना। किंतु हम भी अभी होना, अभी इतने हम हैं, किंतु यदि अत्यंत नीच कुल का कोई व्यक्ति हम लोगों के पास में आ जाए, हरिनाम भी करता है, तो हम उसका छुआ हुआ नहीं लेंगे, न पानी पिएंगे न कुछ करेंगे, ऐसा स्वाभाविक होता है। फिर मुसलमान कुल में जन्मने हुए व्यक्ति को इसलिए तो बात ही क्या है। इसीलिए हमारे समाज में ऐसा नियम हो गया कि ब्राह्मण लोग जो होते हैं, विशेष करके यहाँ वाले ब्राह्मण जो हैं, वो जगन्नाथ जी के प्रसाद वहाँ जाकर के तो पालेंगे, किंतु यहाँ पर ठाकुर जी को भोग दिया हुआ कच्चा जो कहते हैं वो कोई चीज़ चावल दाल तरकारी नहीं लेंगे, किंतु यह करना अपराध है। किंतु फिर भी ब्राह्मण होने पर भी सन्यासी है, होटल में खा लेंगे कोई बात नहीं, जानते हैं कि ये ब्राह्मण है, वो जानते हैं कि हम सन्यासी हैं, ब्राह्मण भी हैं, उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, सन्यासी भी हैं, आचरण हमारा सब ठीक है, गंदी चीजें कुछ भी नहीं लेते हम लोग, प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं लेते, तो अभी यहाँ के ब्राह्मण हमारा हाथ का बना हुआ कच्ची रोटी नहीं लेंगे, किंतु होटलों में ले लेंगे, उससे कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ समाज हमारा बन चुका है जो ऐसा करता है।
तो जगन्नाथपुरी में भी वहां ठाकुर जी का प्रसाद तो भोग वहां पर तो ले लेंगे किसी कारण से, किंतु उसमें भी ही चिटेंगे लोग। तो कहते हैं वो हरिदास ठाकुर जी मुसलमान जाति के थे, किंतु वैष्णव उनको जाति का वैष्णव मुसलमान नहीं माना। वो भगवान जैसे उनको भी शुद्ध सत्व का मानते हैं, उनको मुसलमान मानना भी दोष है। तो समाज तो उनको मुसलमान ही मानता था। तो एक समय में अद्वैत आचार्य पक्के ब्राह्मण हैं और वैदिक ब्राह्मण हैं, मंत्र तंत्र शास्त्र विशारद हैं, ब्राह्मणों के मुकुट हैं वो। उनके घर में वार्षिक श्राद्ध का दिन था, पितृश्राद्ध, वही पितृपक्ष वाला वो श्राद्ध। बंगाल में ऐसा नियम है कि पितृश्राद्ध का पहला जो भोग है, पहली थाली, वो दी जाएगी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को, उच्च व्यक्ति को, विद्वान हो, धार्मिक हो, सब प्रकार से योग्य हो, पूज्य हो। हरिदास ठाकुर ने देखा जैसे हजारों आदमी, उनके संबंधी कुटुंबी ब्राह्मण लोग सब आए हैं, बड़े बड़े पूज्य लोग आए हुए हैं। उन्होंने सोचा इसमें सबसे श्रेष्ठ योग्य कौन है, जिसको सबसे ऊंचा आसन वाला और पहला भोग जो है उसको दिया जाए। वहां पर देखा, भक्त दे करके घर से बाहर चले गए। हरिदास ठाकुर को भी उन्होंने निमंत्रण कर दिया था। हरिदास ठाकुर ने सोचा था जब सब ब्राह्मण लोग पालेंगे महाप्रसाद के रूप में, ये उचित के रूप में जो कुछ दे देंगे मैं पालूंगा। इसलिए घर के बाहर में बहुत दूर वो खड़े थे, प्रतीक्षा कर रहे थे ये ब्रह्म भोज हो जाए और सब कुछ ठीक ठुक हो जाए, मैं पाऊंगा। इसके लिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे और हरि नाम कर